पृष्ठ संख्या 95। नंददास। ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी के मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभा जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पे है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है, चंद्रहास अग्रत सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है, यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है, सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी हूँ सो हम हूँ श्रीमद भागवत भाषा करें। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लेव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है। पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई है प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधुनद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए, वहां भी वे जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। ध्रुवदास ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पदविन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूपमंजरी, रसमंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित्र। दो ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं हितोपदेश और नासिकेत पुराण। गद्य में 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। जहाँ तक ज्ञात है इनकी चार पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाममाला। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध हैं, अतः उनसे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 96। रास पंचाध्यायी से ताहि छिन उड़ुराज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रही यों मनसिज खेल्यो फाग घुमड़ धुरी रहो गुलाल ज्यों फटिक छटासी किरण कुज रंध्रन जब आई मानहु वितत वितान सुदेश तनाव तनाई तब लीनो कर कमल योग माला सी मुरली अघटित घटना चतुर बहुरी अधरन सुर जुरली। भ्रमर गीत से कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ इकठाऊँ कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊँ सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण होए वेद क्यों नियति बखाने निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने वेद पुराण निखोजी के पायो कतहु न एक गुण ही के गुण हो ही तुम कहो अकाश ही टेक सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण ना ही और गुण भय कहाते बीज बिना तरु जमय मोहि तुम कहो कहाते वागुन की परछाहरी माया दर्पण बीच गुनते गुण न्यारे भय अमलवार जल कीच सखा सुनु श्याम के। 3 कृष्णदास। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। एक बार गोसाई विठल नाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योड़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विठल नाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगल मान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए दो ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तरणी तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देख्यो आनंद को कंदवा। नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटि बांधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजति गोपी। मनहु विधाता गिरिधर पियहित सूरज धुता धुजा सुख रोपी। पृष्ठ संख्या 97। बदन कांति के सुनुरी भामिनी सघन चंद्रश्री लोपी, प्राणनाथ के चित्त चोरन को भौह भुजंगम कोपी। कृष्णदास स्वामी बस कीन्हे प्रेम पुंज को चोपी। मोमन गिरिधर छवि पै अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पै चलिके, चिबुक चारि गढ़ि ठठक्यो। सजल श्याम घन बरन लीन वै फिरिचित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है। 4. परमानंद दास, यह भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था, इसी से ये कान्य कुब्ज अनुमान किए जाते हैं। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूल रहे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुँह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। 2 पद देखिए, कहा करो वैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहान न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए, जह नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजरज तजी मेरी जाए बलाए। राधे जू हारा वली टूटी, उरज कमल दल माल मर गजी, बाम कपोल अलक लट छूटी, बर उरज करच बिच अंकित, बाहु जुगल बलया वली फूटी, कंचुकी चीर विविध रंग रंजित, गिरधर अधर माधुरी घूटी, आलस बलित नैन अनियारे, अरुण उनींदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सुरति समय रस, मदन निरपति की सेना लूटी। 5. कुंभन दास, ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद दास जी के ही समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करिबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु और सबै बेकाम। इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया, तुम ही जानी करी कनक दोहनी, घरते पठई मैया, निकट ही है या खरिक हमारो नागर लेहु बलैया, देखियत परम सुदेश लरिकई, चित चौंट्यो सुंदरैया, कुंभन दास प्रभु मानी गई रति, गिरि गोवर्धन रैया। 6. चतुर्भुज दास, ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिलते हैं, द्वादश यश पृष्ठ संख्या 98, भक्ति प्रताप तथा हित जुको मंगल। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है, जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हरे सुत के कर्तब मोपै, कहत कहे नहीं जात, भाजन फोरी ढारी सब गोरस, लय माखन ददी खात, जो बरजो तो आँखी दिखावे, रंचहु नाही सकात, और अटपटी कहलो बरनो, छुवत पानी सोगात, दास चतुर्भुज गिरधर गुनहो, कहति कहति सकुचात। सात छीत स्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। हे विधना तोसो अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। देखिए, भोर भय नवकुंज सदनते आवत लाल गोवर्धन धारी लटपट पाग मरगजी माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी बिनगुन माल बिराजति उरपर नखचत द्वज चंद अनुहारी छीत स्वामी जब चिताए मोतन तबहो निरखी गई बलिहारी। आठ गोविंद स्वामी ये अंतरी के रहने वाले सनाढ्य ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिखा। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 और 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। प्रातः समय उठी जसुमती जननी गिरिधर सुत को उबटिन वावती करी सिंगार बसन भूषण सजी फूलन रचि रचि पाग बनावती छूटे बंद बागे अति शोभित बिच बिच चोव अर्गजा लावती सूथन लाल फूंदना शोभित आज की छवि कहती न आवती विविध कुसुम की माला उर्धरि श्री कर मुरली बेत गहावती लय दर्पण देखे श्रीमुख को गोविंद प्रभु चरणनी सिरनावती। 9. हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरि राम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम वनचंद्र कृष्णचंद्र गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की पृष्ठ संख्या 99 और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी। आपके पदों का संग्रह 84 के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा गद्य में है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोक वास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल बाणी भी मिलती है जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन दास ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हित जी को मंगल लिखा है। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रजीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयां लिखी हैं। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकर पदों से रहो कौ काहू मन ही दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सपत करो तिन छिए जो अवतार कदम्ब भंजत है हरि दृढ़ व्रत जूहिए तेउ उमगी तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए खौ रतन फिरत जो घर घर कौन काज इमिजिए हित हरिवंश अनत सच नाही बिच बिन या रसही पिए हित 84 से ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी नख सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी यो राजति कबरी गोथित कच कनक कंज बदनी चिकुर चंद्रिकन बीच अधर बिदु मानो ग्रसित फनी साभंग रस सिर स्रवत पनारी पिय सीमत ठनी भ्रिकुटी काम को दंड नैन शर कज्जल रेख अनि भाल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलज मनी दसन कुंद सरसाधर पल्लव पीतम मन समनी हित हरिवंत प्रशंसित श्यामा कीरति बिसद घनी गावत श्रवणनि सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी विपिन घन कुंज रति केली भुज केली रुचि श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी हृदय अति फूल रस मूल पिय नागरी कर निकर मत मनु विविध गुण रागिनी सरस गति हास परिहास आवेश बस दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी हित हरिवंश सुनि लाल लावण्य भिरे प्रिया अति सूर सुख सुरत संग्रामिनी। 10 गदाधर भट्ट ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल पृष्ठ संख्या 100 की इन पंक्तियों से भी होता है। भागवत सुधा बरखे बदन काहू को नाहिन दुखद गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ी संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया। सखी हो श्याम रंग रंगी देखी बिकाय गई वह मूर्ति सूरत माही पगी संग हुतो अपनो सपनो सो सोई रही रस खोई जागे हु आगे दृष्टि परे सखिने कुन न्यारो होई एक जु मेरी अखियन में निसिध्योस रहो करी भौन गाय चरावन जात सुनियो सखी सोधो कन्हैया कौन कासो कहो कौन पति आवे कौन करे बकवाद कैसे के कही जाती गदाधर गूंगे ते गुर स्वाद। इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिखकर भेजा। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्म माश्रित्य वृंदा टविम तद पदांकम असंभाष्य तद भाव गंभीर चित्तान कुतः श्यामा सिंधो रसाव्य गाह। इस यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंत संवत 1600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी कृष्ण तन लीन मन रूप की चातकी कृष्ण मुख हिम करण की चकोरी कृष्ण दृग भृंग विश्राम हित पद्मिनी कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी विमुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा करति निज नाह की चित्त चोरी प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने अमित महिमा इतय बुद्धि थोरी झूलती नागरी नागर लाल मंद मंद सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल फरहरात पर पीत नील के अंचल चंचल चाल मनहु परस्पर उमग ध्यान छवि प्रगट भई तिहि काल। पृष्ठ संख्या 101 सिलसिलात अति प्रिया सीसते लटकति बेनी भाल जन प्रिय मुकुट बरहि भ्रम बस त्यह ब्याल विकल बिहाल मल्ली माल प्रिया के उर्की पिय तुलसी दलमाल जन सुरसरी रवि तनया मिली के शोभित श्रेणी मराल श्यामल गौर परस्पर प्रति छवि शोभा विशद विशाल निरखी गदाधर रस की कुवरी मन पर्य सुरस जंजाल। 11 मीराबाई ये मेरतिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री राव दूधा जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थीं। इनका जन्म संवत 1573 में चोकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थीं। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थीं। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर न हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थीं। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था, स्वस्ते श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के समहो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। नाते सबे राम के मनियत सुहृद सुसेव जहाँ लौ, अंजन कहाँ आँख जो फूटे बहुतक कहो कहाँ लौ। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वे कहती कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूँ। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थान मिश्रित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए चार ग्रंथ कहे जाते हैं, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं, पृष्ठ संख्या 102। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने रसाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजती उर बैजंती माल। छुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। मनरे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरन, जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हो राखी अपनी शरण। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख सिखो श्री भरन, जिन चरण प्रभु परस लीन है तरी गौतमी घरनी। जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरन, दसी मीरा लाल गिरधन अगम तारन तरन। 12 स्वामी हरिदास। ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनको गुरुवत सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और इन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाने को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाही, पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाड्य ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचरी सरनदास जी ने, जो इनकी शिष्य परंपरा में थे, लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की बाणी आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए, ज्योही ज्योही तुम राखत हो त्योही त्योही रहियत हो हे हरि, और अपरचे पाय धरो सुतो कहो कौन के पैड भरी। यद्यपि हो आपनो भायो कियो चाहो कैसे करी सको जो तुम राखो पकरी। कहे हरिदास पिंजरा के जनावर लो तरफाए रहो उड़िबे को कितऊ करी। 13 सूरदास मदन मोहन, ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे, जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की माल गुजारे के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सबका सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के चिटिया लिखकर रख दिए। 13 लाख संडीले आए, सब साधु मिलके गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं, कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचना काल संवत 1590 और 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके दो पद नीचे पृष्ठ संख्या 103 दिए जाते हैं। मधु के मतवारे श्याम, खोलो प्यारे पलके, शीश मुकुट लटा छुटी और छुटी अलगे, सुर नर मुनि द्वार ठाड़े दरस हेतु कलके, नासिका के मोती सोहे बीच लाल ललके, कटी पीताम्बर मुरली कर श्रवण कुंडल झलके, सूरदास मदन मोहन दरस देहो भलके, नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उरधरिया, करत विनोद तरनी तनया तट श्याम श्याम उमग रस भरिया, यो लपटाई रहे उर अंतर मरकत मणि कंचन ज्यो जरिया, उपमा को घन दामिनी नाही कंदरप कोटि वारने करिया, सूर मदन मोहन बलि जोरी नंद नंदन विषभानु दुलरिया। 14 श्री भट्ट, ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1625 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है, पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी सी पुस्तक आदि बाणी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार ये यह मलार गा रहे थे, बीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। कहते हैं राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और उन्होंने इस पद को इस प्रकार पूरा किया। श्यामा श्याम कुंजतर ठाड़े जतन कियो कछु मैना, श्री भट्ट उमड़ी घटा चहु दिशी से घिरी आई जलसिना। इनके युगल शतक से 2 पद उद्धृत किए जाते हैं। ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की बोलत अमृत बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहनी राधा रानी, बसो मेरे नैननी में दो चंद, गोर बदन विषभानु नंदिनी श्याम वरन नंद कंद, नंद नंद गोलक रहे लुभाए रूप में निरखत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। 15 व्यास जी, इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सनाढ्य शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौर संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा, यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कौने सचु पायो, जहाँ तह विपति जार जुवती ज्यों प्रगट पिंगला गायो, पृष्ठ संख्या 104। यह पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरवंश जी के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर उन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया, हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिबन सही सरस रीति को कापे चली है भार, को राधा दुलरावे गावे वचन सुनावे चार, वृंदावन की सहज माधुरी कही है कौन उदार, पद रचना अब कापे वह है निरस भयो संसार, बड़ो अभाव अनन्य सभा को उठिगो ठाट सिंगार, जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतत सहज रूप आगार, व्यास एक कुल कुमुद चंद बिन उडगन जूठी थार। जब हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधु शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर न गए और अधीर होकर इन्होंने यह पद कहा, वृंदावन के रुख हमारे माता पिता सुत बंध, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलन की गंध, इन्हीं पीठी रह अनत दीठि करे सो अंधन में अंध व्यास इन्हीं छोड़े और छड़ावे ताको परियो कंध। इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है और विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। यह श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलो पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया और अस्खान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियां इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी है जिसे लोगों ने भूल से सुर सागर में मिला लिया है। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण या दिए जाते हैं। आज कछु कुंजन में वर्षा सी, बादल दल में देखी सखीरी, चमकती है चपलासी, नानी नानी बुंदन कछु धुरवा से, पवन कहे सुखरासी, मंद मंद गरजती सी, सुनियत नाचती मोर सभासी, इंद्र धनुष बग पंकति दोलती, बोलती कोक कलासी, इंद्रवधु छबि छाई रही, मनुगिरी पर अरुण घटासी, उमग मही रुह स्यो मही फूली, फूली भूली मृगमाला सी, रटती प्यास चातक ज्यो रसना, रस पीवतहु प्यासी, सुघर राधिका प्रवीण वीणा बर रास रचो, श्याम संग वर सुढंग तरणी तनया तीरे, आनंद कंद वृंदावन सरद मंद मंद पवन, कुसुम पुंज ताप दवन धुनित कल कुटीरे, रुणित किंकरणी सुचारु नुपुर तिमि बलहारु, अंग बर मृदंग ताल सरल रंग भीरे, गावत अति रंग रयो मोपे नहीं जात कयो, व्यास रस प्रवाह भयो निरखि नैन सीरे। पृष्ठ संख्या 105। साखी, व्यास न कथनी काम की, करनी है इकसार, भक्ति बिना पंडित वृथा, ज्यों खर चंदन भार, अपने अपने मत लगे बादी मचावत सोर, त्यों त्यों सबको सेई बो एके नंद किशोर, प्रेम अतन या जगत में जाने विरला कोय, व्यास सतन क्यों परिसी है पची हार्यो जगरोय, सती सूरमा संत जन इन समान नहीं और, अगम पंथ पै पग ढरे डिगे न पावे ठोर। 16 रस खान, ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह बंस की ठसक छाड़ी रस खान। संभव है पठान बादशाह की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्री नाभा जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहाँ गोसाई विठल नाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्यों न मन लगाया जाए जिस पर गोपियां इतनी मरती थीं। इसी बात पर ये वृंदावन चले आए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छबि लखी भय मियां रसखान। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गुण भक्ति भगवत भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्र सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचना काल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है क्योंकि गोसाई विठलनाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचना काल संवत 1671 है। अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं, प्रेम वाटिका दोहे और सुजान रसखान कविता सवैया। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कविता सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरा करोह मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। पृष्ठ संख्या 106। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजी डारो आठौ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो नैनन सो रस खान सबै ब्रज के बन भाग तड़ाग निहारो केतक ही कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है। इस बात को रसखान यो कहते हैं। ब्रह्म मैं ढूंढ्यो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन देख्यो सुनियो कबहू न कहूँ वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन तेरत हेरत हारी पर्यो रसखान बतायो न लोग लुगायन देख्यो दुरो वह कुंज कुटीरे में बैठो पलोटत राधिका पायन। कुछ और नमूने देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गले पहिरोंगी ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी भावती सोई मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश्वर जाहू निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रहे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे ताहि अहिर की छो हरिया छछिया भर छाँच पे नाच नचावे। प्रेम वाटिका से जेहि बिनु जाने कछु ही नहीं जान्यो जात विशेष सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष प्रेम फास सो फसी मरे सोई जिए सदा ही प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। 17 ध्रुवदास। ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इनके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं प्राप्त हुआ है। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे चौपाई कवित्व सवैया आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके 40 ग्रंथों के लगभग मिले हैं, जिनके नाम ये हैं। वृंदावन सत, श्रृंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद दशा विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग हुलास, मान रसलीला, रहस्यलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भक्त नामावली, मन सिंगार, भजन सत, प्रीति चौवनी, रस मुक्तावली, वामन बृहत पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दशा, वैद्य लीला, दान लीला, ब्याहलो। नाभा जी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी है, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवाद दिए हैं, जैसे सभा मंडली 1681, वृंदावन सत 1686 और रस मंजरी 1698। अतः इनका रचना काल संवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। श्रृंगार सत से रूप जल उठत तरंग है कटाक्षन के अंग अंग भौरन की अति गहराई है नैनन को प्रतिबिंब पर्यो है कपोलन में। पृष्ठ संख्या 107। तेई भय मीन तहां ऐसी उर आई है अरुण कमल मुस्कान मानव फबी रही थिरकन बेसरी के मोती की सुहाई है भयो है मुदित सखी लाल को मराल मन जीवन जुगल ध्रुव एक ठाव पाई है। नेह मंजरी से प्रेम बात कछु कही न जाई उलटी चाल तहां सब भाई प्रेम बात सुनी बौरो होई तहां सयान रहे नहीं कोई तन मन प्राण तिहि छिन हारे भली बुरी कछुए न विचारे ऐसो प्रेम उपजी है जब ही हित ध्रुव बात बनेगी तब ही। भजन सत से बहु बीती थोरी रही सो बीती जाए हित ध्रुव बेगी विचारी के बसी वृंदावन आए त्यागी लाजही अभिमान ही प्रेम लीन वह दिन आप को तृण समझा नहीं सकल सार को सार भजन तू करी रस रीति रे मन सोच विचार रही थोरी बहु बीती। कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराज नागरी दास जी, अलबेली अली जी, चाचा हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं, वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सीधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आ आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है।